मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। एफआईएस के आज 11 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं गुलामों पर कुछ बात करूंगा, स्लेव्स पर, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में भी आपने सुना, अखबारों में भी थोड़ा सा दिया हुआ है कि असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है तिनसुखिया। तिनसुखिया बहुत प्रसिद्ध जिला है, एक मेल में ट्रेन भी जाती है, तिनसुखिया मेल उसे कहते हैं। उस जिले का एक स्थान है बाघजन। वहां जो ऑयल इंडिया लिमिटेड में तेल के कुएं थे, उस कुओं में दोस्तों आग लग गई है। ये खासकर जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई घटना है। बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह के टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, या कह लीजिए इसे एक ट्रिक भी कि आप ताकि ज्यादा नंबर पा सके दूसरों से, कि जो समसामयिक घटनाएं हैं उनका कहीं हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख कर दें। तो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपदा पर कोई प्रश्न आ गया, तो चाहे तो आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन बहुत तरीके से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझकर भर्ती की है। दोस्तों, हर मंत्रालय अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। तो जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो जैव विविधता से जुड़ी हुई है। और मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले एक साल के दौरान भारत ने जंतुओं की 39 नई प्रजातियां ढूंढी हैं, और इसी तरह से पौधों की 12 नई प्रजातियां खोजी हैं। जंतुओं की 39 और पौधों की 12 नई प्रजातियां। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप कह लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस का, तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। यह लेटेस्ट डेटा है, बेहतर होगा कि आप इसे नोट कर लें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, और उसमें से एक आर्टिकल है जो अभी सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया है, और साथ ही साथ जो बैंक रेट्स कम करने की बात हो रही है, जो लोन वेव यानी कि छूट देने की बात हो रही है, माफ़ करने की, तो इस सब मुद्दों को लेकर के जो हमारे RBI के पहले गवर्नर रहे हैं सुब्बा राव जी, उनका लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। ये लेख मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लेख है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, और मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन मैं आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन यदि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक इसी तरह से मैं आपको एक और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो गुरुचरण दास जी का है, और आप जानते हैं कि गुरुचरण दास जी बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपको जब भी इनके लेख पढ़ने को मिले आपको पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर में ये लेख छपा है, हिंदी में है, इसे भी आप पढ़िएगा। इसमें इन्होंने बताया है कि अभी जो कोरोना का संकट आया, इस संकट से हम कौन से 10 जरूरी लेसन्स सबक सीख सकते हैं, और सरकार के निर्णय लेने में कहां कहां गलतियां हुई हैं। तो एक प्रकार से अभी जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है उसके बारे में आपको एक आलोचनात्मक दृष्टि मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, सच बात यह है कि जब आलोचनात्मक समीक्षा करने की बात की जाती है एग्जामिनेशन में, तो बहुत कम स्टूडेंट में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी तरफ से कोई समीक्षा कर सके। तो हम करते कैसे हैं? करते इसी तरह से हैं कि आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, उनकी चीज़ें हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं, और उन्हीं को हम अपने शब्दों में लिख कर आते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि चूंकि ये गुरुचरण दास जी का है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। नहीं, ये इसमें इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है वो है गुलाम स्लेव्स। यह विषय मैंने क्यों चुना, या आप बहुत अच्छे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो एक घटना घटित हुई, एक काले व्यक्ति को जब पुलिस वाले ने, आप यूं कह लीजिए कि जानबूझकर तो हत्या नहीं या क्या थी भी, कि जब उसके गर्दन को अपने घुटने से दबा दिया और उसकी मौत हो गई, तो केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप के दूसरे देशों में भी जबरदस्त रूप से आंदोलन हो गए हैं, खासकर नस्ल भेद की नीति के खिलाफ, राइट? कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि एक मूर्ति तोड़ी गई, और अब मूर्तियों को तोड़ने का एक सिलसिला सा चल निकला है। बहुत से देशों में ऐसी मूर्तियों को तोड़ने की मांग की जा रही है, और यहां तक कि मूर्तियां तोड़ दी गई हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध दासों की गुलामी से रहा है, गुलामों गुलामी प्रथा के समर्थन से रहा है, नस्ल भेद से रहा है। मतलब ये जो आंदोलन है इस तरीके से बढ़ रहा है। और आपको मालूम है कि जो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस ने की थी, और यहाँ तक कि कोलंबस की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया है। यह मैं अपने ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों, आप ये जो अमेरिका का इतिहास है इसे आप एक बार जरूर पढ़िएगा, अमेरिका का इतिहास, तो आपको पता लगेगा कि अमेरिका के मूल लोग कौन थे, ओरिजिनल कौन थे, कैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। हालांकि बहुत ही संक्षिप्त में ही आपको ये बातें बताई गई हैं और विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, आज अमेरिका जो कुछ भी है उसमें किन किन का योगदान रहा है। और आप कभी भी ओलंपिक गेम्स के रिकॉर्ड देखिए, अमेरिका लगभग टॉप पर होता है ना, अमेरिका, चीन, रूस, अब तो रूस के बिखर जाने के बाद रूस नहीं रहता है। तो उसमें आप पाएंगे कि जो खेल के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मेडल मिलते हैं वो ब्लैक्स के ही होते हैं, आसपास ही भले हो ब्लैक और वाइट को लेकर के, लेकिन बहुत से मेडल्स केवल ब्लैक लोग ही, यानी कि जो काले नस्ल के लोग हैं, काले रंग के लोग हैं, वे लेकर आते हैं। खैर दोस्तों, तो अब ये आंदोलन चूंकि चल निकला है तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो ये दास प्रथा रही है, गुलामी प्रथा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो ही। लेकिन मैं आपको सतर्क करूंगा कि मैं केवल थोड़ी जानकारी की बात कर रहा हूं, आप इसका एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, यहां दो अलग अलग शब्द हैं। एक है दास प्रथा, यानी कि आप गुलाम रख रहे हैं, स्लेव, और दूसरा है नस्ल भेद और गुलामों का व्यापार। शुरुआत इसकी गुलामी से हुई थी, यानी कि हम कुछ लोगों को गुलाम बना करके रख लेते हैं, चाहे वो कमजोर लोग हों, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हम युद्ध में जीत लें, जो भी है, तो उन्हें हमने गुलाम बना लिया और उनको बस खाना पीना देते रहे और वो हमारी सेवा करते रहे। लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी से जो एक बहुत बुरी स्थिति आई वो आई इनके व्यापार करने की। मतलब बकायदे जो काले लोग थे, खासकर अफ्रीकी, और अफ्रीका में भी जो सबसे जब जो क्षेत्र चुना गया वो मिडिल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका को, यहां के जो काले लोग थे इनको गुलाम बनाया जाता था और बाकायदे इन्हें खरीदा और बेचा जाता था, इनकी मंडियां होती थी। भारत में भी आपने जानवरों की मंडियां देखी होंगी जहां गाय, बैल, भैंस, बकरियां खरीदी और बेची जाती हैं। इसी तरह से मनुष्यों की मंडियां हुआ करती थी, वहां बोलियां लगती थी, लोग टटोल टटोल करके इन गुलामों को देखते थे जैसे कि जानवरों को देखते हैं, इनके दांत कितने हैं, पुट्ठे कितने हैं, मजबूत कितने हैं, यानी कि इनकी जिंदगी कितने सालों की, इनसे हम क्या काम ले सकते हैं। और खासकर जो उपनिवेश युग शुरू हुआ, देखिए उपनिवेश युग शुरू होने के बाद ही औद्योगिक युग शुरू हो गया, दोनों लगभग लगभग आप कह लीजिए कि थोड़े से आगे पीछे की बात है। तो जो यूरोप के देश हैं जैसे कि आपका ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, हॉलैंड है, आप इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में जानते हैं कि इन्होंने दुनिया में जाना शुरू किया, तो इन्होंने अपने उपनिवेश फैलाए, तो ये अलग अलग क्षेत्रों को जीतते चले गए। जब जीतते चले गए तो वहां तो आबादी थी नहीं, अब इन लोगों को अपने औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, तो अब ये कच्चा माल लाएं कहां से, जमीन थी लेकिन वहां काम करने वाले लोग नहीं थे। तो दोस्तों, जबरदस्त रूप से फिर इन गुलामों का व्यापार होना शुरू हुआ, गुलामों का व्यापार, और अफ्रीकी देश से गुलाम बकायदे खरीद करके लाए जाते थे इन क्षेत्रों में और उनसे काम लिया जाता था। इनको बकायदे आप देखेंगे कॉफी, तंबाकू, कोको, गन्ना, कपास, सोना चांदी की जो खदानें हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सब कामों में लगाया जाता था। और इनकी इनका जो जीवन होता था वो बहुत ही दुखद होता था। अब वो जब वहां गए तो सीधी सी बात है कि उनकी पीढ़ियां वहीं रहने लगी और वही गुलाम अभी आपको नस्ल भेद के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका वहां के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए इस तरह के वाक्य आपको अखबारों में पढ़ने को भी मिलते होंगे। देखिए भारत में क्या हुआ, भारत में स्थिति दूसरी थी, गुलाम के रूप में तो नहीं लेकिन एक गिरमिटिया शब्द आपने सुना होगा, गिरमिटिया। ये बेसिकली एग्रीमेंट के तहत हमारे यहां से भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, यहां के साउथ इंडिया से बहुत से लोग सन 1850 के आसपास अंग्रेजों के द्वारा इन अपने क्षेत्रों में भेजे गए, मॉरिसस वगैरह का सुनते हैं, ट्रिनिडा टोबेको का सुनते हैं, फिजी का सुनते हैं कि वह भारत मूल का व्यक्ति है और वहां का राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो ये भारत मूल के लोग कैसे हैं? ये सब 1850 के आसपास भारत से उन देशों में भेजे गए, ब्रिटेन ने भेजे, और इनसे एग्रीमेंट किया जाता था कि 3 साल का एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट, आपको ये मजदूरी देंगे, आप वहां जाकर के काम कीजिए। ये वहां जाते थे और एग्रीमेंट तो हो गया, फिर इनका शोषण शुरू हो जाता था, चले तो जाते थे, वापस नहीं आ पाते थे, इनके पास इतना पैसा ही नहीं होता था, अब मजबूरी थी कि वो वहां काम करते रहे और वहीं बस गए। उन्हीं को हम कहते हैं अब भारत मूल के लोग। और जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो याद रखिए कि गांधी जी ने इन्हीं लोगों के शोषण को, शोषण होते हुए देखते अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको हम कहते हैं गिरमिटिया, यानी कि जो एग्रीमेंट के थ्रू गए हुए मजदूर हैं उन्हें हम कहते हैं गिरमिटिया। भारत में यह स्थिति रही, लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति भारत में यह रही कि यहां मानव का इस तरीके से व्यापार नहीं हुआ कि खरीदी बिक्री हो रही है मनुष्य की। इस मायने में आप भारत को बहुत एक कह लीजिए कि विश्व में सम्मानित राष्ट्र कह सकते हैं, बल्कि उल्टे आप देखिए कि जब आप मिडिल मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो शुरुआत के बाद आप देखते हैं कि गुलाम वंश हमारा एक वंश रहा है, मतलब गुलाम वंश के लोगों ने भारत में आकर के शासन किया है। आप जानते हैं कि 1206 से लेके 1290 तक का जो पीरियड रहा है वो भारतीय इतिहास में गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, और इसमें तीन तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है गुलाम वंश में। इसके जो संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहे हैं जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया है। रजिया सुल्तान का नाम आप जानते हैं, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिस भी एक तरह से बहुत ही मतलब आप कह लीजिए कि स्थापित शासक रहे हैं, और फिर बलबन, ये जो शासक हैं ये गुलाम वंश के शासक हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को सजेशन दूंगा कि गुलाम वंश को थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। देखिए एग्जामिनेशन की तैयारी तो इसी तरह से होती है, सिविल सर्विस की तैयारी तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम किन टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस करें, किन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। अगर ऐसा थोड़ा सा कर लेते हैं तो दूसरों की तुलना में हमें फ़ायदा मिल जाता है और अधिक नंबर लाने की गुंजाइश बन जाती है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस अब इतना ही। जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं वो सब मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है योगेश पुरबिया जो उदयपुर राजस्थान से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।